अध्याय चल रहा है 5, स्कंद है 6, श्लोक संख्या 6, 7 और 8 जो है सामने बोर्ड पर लिखा है, बड़ा है इसलिए हम सीधा इसको वर्ड मीनिंग ना लेकर सीधा हम लोग उच्चारण करेंगे इसका। तो आप सभी लोग बोर्ड पर देखिए और हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। उवाच चाथम हर्षवा कथम संशपथवे प्रजा आदृष्टवान्तं भुवो यूयम् बालिशावत पालका तथेकं पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंसां संपुष्टलिपतिं नदीमुभयतो वाहम् पञ्चामुञ्चान्दुतं गृहम् क्वचिद्वंसं चित्रकथम् शोरपयं स्वयं भ्रमी उवाच चायथं हर्यशवा कथं संशयथा वे प्रजा अदृष्टवान्त भूयो यूयम् बालिशावत पातकः तथेकं पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंसां संपुष्पलिपतिं नदीमुभयतो वाहम् पञ्चपञ्चाद्वितं गृहम् क्वचिद्वंसं चित्रकथं शोरपयं स्वयं भ्रमी। आखिरी बार हम इन तीनों श्लोकों को सब इकट्ठा बोलते हैं। सब बोलिए। उवाच चाथम हर्षवा कथं संदृशथ वे प्रजा अदृष्टवान्तं भूयो यूयम् बालिशावत पातका तथेक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं बहुरूपा स्त्रियं चापि पुंसां संपुंशलिपतिं नदीं भूयं तो वाहं पञ्चं चादितं गृहं कचिध्वंसं चित्रकथं शोरं भवयं स्वयं भ्रमी। धन्यवाद सुख। सीधा हम इसका अनुवाद सुनेंगे ध्यानपूर्वक। महामुनि नारद ने कहा, हे हर्यवर्षवो, तुमने पृथ्वी के शोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहां पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं आता। वहां पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमारगिनी है, असाध्वी है और वह नाना प्रकार के वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। एक 25 पदार्थों से बना हुआ अद्भुत घर भी है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज क्षूरों द्वारा वज्रों से बनी है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो, तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। नारद मुनि ने देखा कि हर्यश्व नामक बालक अपने से पहले से शुद्ध हो चुके थे क्योंकि वे तीर्थ स्थान में रह रहे थे और वे एक तरह से मुक्ति पाने ही वाले थे, तो फिर उन्हें उस गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए जो इतना अंधकारमय है। कि एक बार प्रवेश करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस रूपक के माध्यम से नारद मुनि ने उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहा कि गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन क्यों करना चाहिए। परोक्ष में नारद मुनि ने उनसे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा या भगवान विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता, वह अधिकाधिक माया में बद्ध होता है। नारद मुनि का उद्देश्य प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान सामान्य किंतु प्रजनन के जटिल मामलों में न उलझाकर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। ऐसी ही सलाह प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को भी दी थी। भागवतम में सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय के पांचवें श्लोक में, तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्य अग्नि या मसद्गृहता हित्वाम नुपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद्धारिमा धरिश्रियत। गृहस्थ जीवन के अंधकार पूर्ण कुएं में मनुष्य सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि यह नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि मनुष्य अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग कर वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारद ने हरे शवों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने की सलाह दी, क्योंकि वह पहले से आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे, तो फिर क्यों कर वे इस तरह बद्ध हों। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में जो ये प्रसंग चल रहा है, इसमें प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप अध्याय है। प्रजापति जो कि प्रचितस के पुत्र हैं, जिनको आज्ञा मिली कि आप विवाह कीजिए और फिर इस धरती पर जनसंख्या बढ़ाइए, और इस बीच नारद मुनि जी का वहां पर अवतरण हुआ जहां पर कि 10,000 पुत्र प्रजापति के एक ऐसे तीर्थ स्थान पर गए जहां पर कि उन्होंने लगभग काफी समय तक स्नान इत्यादि किया, तपस्या करी, और 10,000 पुत्रों का यहां पर एक ही नाम दिया है, हरेश्व। और इन सबको कहा था कि आप जाके तपस्या कीजिए और फिर आके आप धरती पर प्रजा को बढ़ाएंगे। इस बीच वहां पर नारद मुनि पहुंचते हैं। नारद मुनि जी जो हैं भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, और इनके पास एक ऐसा पासपोर्ट है और इनका वीजा हर जगह लगा, ये कहीं पर भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी यूनिवर्स के अंदर के लोगों में तो आसानी से जा सकते हैं, यहां तक कि भगवान से मिलने भगवान के पास भी जा सकते हैं। और आए दिन बड़ी सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेशन यहां से वहां वहां से इधर करते रहते हैं। इनका अल्टीमेटली उद्देश्य ये होता है कि किसी न किसी तरह जो लोग भगवान से विमुख हैं उनको ज्ञान देते रहें, उन्हें समझाते रहें कि भगवान किस प्रकार उन सबके जो हैं अधिष्ठाता देव हैं। जब जब कोई व्यक्ति भी भक्ति से थोड़ा अलग होता है, विमुख होता है, तो उनकी प्लानिंग्स के बीच में जाकर भगवान जो नारद जी हैं उनको जो है ज्ञान देते हैं। तो नारद मुनि अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कहां प्रचार किया जाए। तो अब यहां पर इस प्रसंग में उनको एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका काम है प्रचार का, कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके जीवात्माएं भगवान तक पहुंचे। तो ये 10,000 शिष्य जो हैं तैयार थे, एकदम मुक्ति के कगार पर थे, अर्थात ऑलमोस्ट मुक्त थे। उस तीर्थ स्थान में स्नान इत्यादि कर पवित्र नदी में अपने को पूरी तरह मुक्त कर चुके थे कलमशों से। अब वो तैयार थे आगे प्रजा बढ़ाने के लिए, जो कि उनके पिताजी का आदेश था। नारद मुनि जी एंड समय पर पहुंचकर उनको ये शिक्षा दे रहे हैं, जो आज के 3 श्लोकों में एक रूपक चित्रक दिया है, जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार नारद मुनि जी कहा कि हे हरे वैष्णवों, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। अब वो इस रूपक चित्र के बारे में देखे, कुछ सेंटेंसेस बोले उन्होंने, और वो क्योंकि प्यूरिफाइड सोल थे, अब मुक्त हो चुके थे वो सब लोग ऑलमोस्ट, उनको सब कुछ समझ आ गया, ज्ञान में पूरी तरह वो लोग क्या थे, अब स्थित थे, स्थित प्रज्ञ स्थिति में, उन्हें पता था क्या सही है और क्या गलत है। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है वो सदैव हर कर्म या हर क्रिया उसी के आधार पर करता है। तो यहां पर उनको एक रूपक चित्र दिखाया कि एक ऐसा शहर है, एक ऐसी स्त्री है वहां पर, एक पुरुष है जो उसका पति है, और ये जो रूपक दिया है इसको आगे थोड़ा आगे के श्लोकों में कुछ खोलकर बताया कि कहां पर क्या वो पुरुष है, दूसरा व्यक्ति कौन है, स्त्री कौन है वहां पर, और दो तरफ से बहने वाली नदी क्या है, आगे बताया। तो उसका जो रूपक चित्र है उसका अपने आप ही उन प्रजापति के पुत्रों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो है वास्तव में मनुष्य देह और भौतिक जगत की ही बात की जा रही है। और इस प्रकार वो समझ गए कि जैसे प्रभुपाद जी पूरे प्रपट में लिख रहे हैं गृहस्थ जीवन के बारे में, कि ये हमें इंडिकेट करने आए हैं कि भैया गृहस्थ जीवन में जो एक बार चला जाता है तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, शास्त्र कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि वास्तव में ये मुश्किल है जी। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक ऐसे जो एक बार सुनने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, दूसरे वो लोग जो उसको अपने कर्म में लाकर अच्छा अर्थात उसको एक्सपीरियंस कर जानना चाहते हैं, तीसरे वो लोग जिनको बार बार बताए जाने पर भी और बार बार एक्सपीरियंस करने पर भी और बार बार माया के द्वारा प्रताड़ना होने के बाद भी प्रताड़ित होने के बाद भी नहीं समझ पाते। तो इन 3 श्रेणियों में अधिकतर संख्या किन लोगों की है? तीसरी श्रेणी के लोग ज्यादा है। तीसरी श्रेणी के लोग इन्हें समझाने पर भी या जानने पर भी, समझदार होने के बाद भी ये गलतियां बार बार करते हैं। इस तीसरी श्रेणी के लोग ये अब एकदम पहली श्रेणी के तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ दूसरी श्रेणी में आ सकते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस करने के बाद वो समझ जाएं कि भौतिक जगत क्या है, वास्तव में दुखालय है। इसलिए जब कभी कुछ भक्त लोग भगवान की भक्ति में आते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, कृष्ण बलराम की, जब जुड़ते हैं तो उनका रियलाइजेशन ये होता है, उनका जो अपना हृदय जब खोलते तो वो कहते हैं कि प्रभु जी आप लोग हमें पहले क्यों नहीं मिले। लेडीज भी बोलती है कि आप लोग पहले क्यों नहीं मिले, हम भी विवाह नहीं करते। या कई बार जिनका विवाह नहीं हुआ वो कहते हैं कि हम विवाह नहीं करना चाहते। जेंट्स जो मिलते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए प्रभु जी, काश हम भी ना जाते गृहस्थ जीवन में। लेकिन ये सब बोलना और इसको पालन करना जमीन आसमान का अंतर है। बचपन से हर लड़की भी बोलती है मैं शादी नहीं करूंगी, हर लड़का बोलता है मैं भी शादी नहीं करूंगा। कुछ समय के बाद वो एक शादी नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है। कारण ये शब्दों का खेल नहीं है, ये सब प्रचेष्टा थोड़ी है। आप लोग प्रजापति के पुत्र थोड़ी है कि इतनी तपस्या करी आपने और आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया अब कि नहीं बस नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके व्यक्ति इन चीजों को समझ पाता है। तो जो थर्ड डिग्री के लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा, जो बार बार गलतियां कर रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रही चीजें, ऐसे लोगों की सजा अलग है। जो दूसरी श्रेणी में आना चाहते हैं या आ गए हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं कि हां ये जगत दुखालय है, यहां पर इस जगत का केंद्र बिंदु केवल यौन संबंध ही है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि हो सकता है, उन्होंने कहा इस जगत को मैथुन आगार, अर्थात आगार का मतलब हथकड़ियां है ना, मतलब जो लोग भगवान से विद्रोह कर अलग से इंजॉय करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वहां जो सजा, वो जो गलती करी है उसकी जो पनिशमेंट है, उनको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है और हथकड़ियां डाली जाती हैं, कौन सी, मैथुनागार, अर्थात मैथुन जीवन की हथकड़ियां हैं। जैसे यहां कोई गलती करता है तो तिहाड़ जेल में डालते हैं और मोटी संगलों से उसको बांधा जाता है, लोहे की संगलों से, ताकि बाहर ना निकल सके। दो संगले और डालने की तो हिल भी नहीं पाएगा, पैरों में भी बांधते तो चल भी नहीं पाएगा। आध्यात्मिक जगत में भगवान से विद्रोह या भगवान से अलग होकर इंजॉय करने की इच्छा से जब उसको इस भौतिक जगत में डाला गया तो कौन सी हथकड़ी पहनाई गई, मैथुन जीवन की। और जीवात्मा जब इसको पूरा करने के लिए उसको लगता है कि हां मैं इसको पूरा करता हूं, तो रेगुलेटेड वे में करता है, अगर शास्त्र सम्मत विवाह कर और फिर विवाह के सारे संस्कारों को पूरा करना, उसके पश्चात संस्कारित संतान को उत्पन्न करके उसके भी संस्कार पूरे करना, रेगुलेटेड वे में अपनी लाइफ को जीना, गृहस्थ आश्रम कहा गया, आश्रम का मतलब ही है कि गुरु के संरक्षण में भक्ति करना, और केवल 25 साल के लिए लाइसेंस मिला है गृहस्थ जीवन में रहने का, जिसमें उस व्यक्ति को 25 साल तक, अगर 100 साल तक का जीवन है, 25 साल तक उसको खूब मेहनत करनी है। समाज के तीन जो और आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, इन तीनों का लालन पालन करना है, केवल अपने चार मेंबर तीन मेंबर फैमिली के नहीं, उसकी जिम्मेवारी पूरे समाज की है। लेकिन अभी तो नहीं होता ऐसा, आजकल तो किसी को भी नहीं पता है, बचपन से बच्चे को कहते हैं बेटा तू बस ये कल पढ़ और चल तेरी फिर जिम्मेवारी बांध देते हैं, चल, बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जो पहले 25 साल है जो ब्रह्मचारी लाइफ है, उसमें व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है कि गृहस्थ जीवन का मतलब क्या है, इसमें आपको जाना है और तुरंत वापिस आना है, और जाना है खूब मेहनत करनी है, धन उत्पादन करना है, परिवार का और इन तीनों आश्रमों की सेवा करनी है गुरु के आश्रम में रहकर, और बड़े कंट्रोल्ड वे में संतान की उत्पन्न करना, अर्थात भगवत भक्त की कामना से संतान उत्पन्न करना, और बाकी आश्रमों को पालना और फिर वापस आ जाना वानप्रस्थ की तैयारी कर। इस आजकल के दायरे में देखिए तो वानप्रस्थ क्या है कि अगर आप घर पे भी बैठे हैं 50 के बाद, तो आपको अधिकतर क्या करना चाहिए, बिजनेस, दुकान, सर्विस, सब कुछ बच्चों को सौंपकर वैराग्य, अर्थात अधिक से अधिक मंदिर में आने का प्रयास करना चाहिए, वृंदावन जाके रहना चाहिए या सेवा करनी चाहिए, चिपके नहीं रहना चाहिए फेविकोल की तरह। और दोनों धर्म पत्नी और दोनों को चाहिए कि वो लोग जो है इस प्रकार मंदिर में सेवाओं में जुड़े, और फिर संन्यास अगर ना भी हो लेकिन वानप्रस्थ भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार ये जीवन इस प्रकार होना चाहिए, प्लानिंग अभी से करनी चाहिए। जिनके जीवन में कोई प्लानिंग ही नहीं है, किसी प्लानिंग को लेकर चल ही नहीं रहे, तो फिर वो लाइफ बहुत ठीक नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि जी ने कृपावश उन भक्तों को भी बताया कि तुम्हें फंसने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करो, तुम भक्ति करो। नारद मुनि जी ने इन 10,000 शिष्यों को जब ये प्रवचन दिया तो उन लोगों ने खुद ही आत्मज्ञान से इस चीज को समझा कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। जैसे चार कुमारों को भी ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम संतान करना, तो कहते नहीं, उन्हें योगिक शक्ति के द्वारा अपने को 5 साल के रखा नग्न अवस्था में छोटे बच्चों की तरह, और कहा नहीं हम तो बस ये जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, बेशक हम पहले 4 बच्चे हैं, आप और कर लीजिए लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने भी जो है भगवान की भक्ति के अपने जीवन समर्पित किया। नारद मुनि जी आज सबको ब्रह्मचारी बना रहे हैं पूरे संसार में, या जो गृहस्थ भी है उसको भी ब्रह्मचारी बना रहे हैं। ब्रह्मचारी मतलब ताकि वो उन सब नियमों का पालन करते हुए आखिरी में भगवान के धाम जा सके। तो इसलिए नारद मुनि जैसे भक्तों का संग मिलना, तो जो जिसको भी मिलेगा ऐसे शुद्ध भक्तों का संग, वो निश्चित रूप से भक्त बनेगा। इसलिए नारद मुनि जी का अगर जीवन को देखें, वो पिछले अपनी लाइफ में एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र से पहले वो एक ब्रह्मीमन नाम के एक वो थे, गंधर्व भी थे, बहुत सुंदर गंधर्व थे ऊंचे लोकों में, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण ऊपर के लोकों में जो है केवल ऐश्वर्य है, तो वहां पर ऐश्वर्य राय के टाइप की बहुत लड़कियां भी हैं, तो वो आए दिन उनके साथ ही रहती थी क्योंकि सुंदर बहुत थे, गाते थे सब कुछ। एक दिन संकीर्तन का प्रोग्राम रखा देवताओं ने कि आज हम भगवान का गुणगान करेंगे, तो वहां पर नारद मुनि पहुंच गए, बट वो उन सब लड़की गर्लफ्रेंड्स के साथ पहुंचे वहां पर, और वहां पर उन्होंने क्या किया, भगवान का गुणगान करने की जगह देवताओं का गुणगान शुरू कर दिया, या दूसरे सॉन्ग था, जैसे कहीं होता ना भजन की जगह हम कोई दूसरे सॉन्ग गाने शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, देवताओं ने उनके श्राप दिया, तुम अभी दासी पुत्र बन जाओ, तो वो दासी पुत्र बन गए। यहां आकर दासी पुत्र बनने के बाद भी क्या हुआ, उनके परिवार में 4 महीने चतुर्मास के समय कुछ बड़े शुद्ध भक्त उनके घर पहुंचे, उनकी मां स्कूल में काम करती थी, तो वहां पर वो आए, उनकी हेल्प करी, उनको सर्व किया, नारद जो थे उन्होंने भी सर्व किया, उनका उचिष्ट खाया, प्रसाद कथा सुनी, उनसे जीवन का लक्ष्य समझा, और माता के देह के देहांत के बाद वो निकल गए कहां, ध्यान में तपस्या में, तब जाके भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिए, और फिर ओझल हो गए दोबारा से, कहा कि अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं इंजॉय क्या कहते हैं उसको, मटेरियल टेंस, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशनिंग रह गई थोड़ी सी, तो तुम मुझे इस जन्म में तो नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन बढ़ाओ इस ईगरनेस को, मुझे प्राप्त करने की ईगरनेस को। जिस प्रकार हमारे इस संसार में रति या लोभ हमारा है किन चीजों के प्रति, धन, स्त्री पुरुष और विशेष प्रकार के आइटम्स खाने के लिए, नहीं, इन सब के प्रति बड़ा स्वाभाविक सा लोभ है हमारे को, तो ऐसा लोभ जब भगवान के प्रति होता है, लौल्यम जैसे कहा गया है, ये लौल्यम जिसके अंदर है वो व्यक्ति एलिजिबल है भगवान की भक्ति करने के लिए। इस प्रकार नारद मुनि ने आगे बढ़े और अगला जन्म उनका जो है नारद जी के रूप में हुआ, और जब से नारद हैं तब से नारद हैं भी, है ना, और अब वो पूरे पूरे प्लैनेट्स में जा जाकर प्रचार करते हैं। जब व्यासदेव जी ने ग्रंथों की रचना करी तो बड़े उदास से बैठे हुए थे, क्यों उदास थे, सारे पुराणों की रचना करी, वेदों को आगे बढ़ाया, क्योंकि दूर देख सकते थे कि कलयुग में क्या होने वाला है, कलयुग के लोग बड़े कम बुद्धि के होंगे, तो उनके लिए उन्होंने ग्रंथों को और सिंपल कर दिया, पुराण सारे लिख दिए, तो भी दुखी होने के कारण नारद जी ने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस प्रकार के दुखी रहने का कारण पता क्या है, कि तुमने इतने सारे ग्रंथ तो लिख दिए जिसमें तमोगुण रजोगुण सतोगुण संबंधित देवताओं की पूजा अर्चना रिचुअल सारे लिख डाले, लेकिन तुमने किसी भी ऐसा ग्रंथ की रचना नहीं करी जिसमें कि भगवान का गुणगान हो, तो इस कारण को समझने के बाद फिर उन्होंने व्यासदेव जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, बोलो ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, इस अमल पुराण की रचना करी जिसमें कि भगवान के सारे जन्म क्रिएशन और सारी चीज का जो है उन्होंने लिख डाला, और इस प्रकार नारद मुनि जी की उनकी हेल्प क्या की, वास्तव में ये हमारी हेल्प की कि आज हम लोग उन श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को भी अमल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं ग्रंथों में, उसी कथाओं में आगे नारद मुनि जी ने ही कयाधु को भी ज्ञान दिया। कयाधु कौन थी? प्रहलाद की माता जी। जब उनको ले जाया जा रहा था इंद्र के द्वारा कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का जो है संतान, हिरण्यकश्यप ने पहले ही पूरे समाज को, पूरे संसार को भयभीत करके रखा है ना, और इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, तो वो अभी तपस्या कर रहा है, उससे पहले कि ये बाहर आए इसको भी मार देते हैं, नहीं उन्होंने मना किया। कयाधु को ज्ञान दिया नारद जी ने, उसने माता के गर्भ में सब कुछ सुन लिया और फिर ये प्रहलाद महाराज इतने सुंदर भक्त बने। इसी प्रकार ध्रुव महाराज भी जब माता सुनीति के कहने पर जंगल में चले गए कि मैं तो जो है जो अब अपने पिता से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करूंगा, तो नारद मुनि जी रोका उनको, तुम कहां जा रहे हो जंगल में? तुम्हें मालूम है नाना प्रकार के यहां पर जीव हैं, डायनासोर, एनाकोंडा, ये तुम्हें खा जाएंगे। तो उन्होंने डरे नहीं वो, तब उनको मंत्र दिया और कहा यस जाओ भगवान के नाम का जप करो। उसके बाद ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। नारद मुनि ने ही मृगारी के केस में भी पर्वत मुनि के साथ जाते हुए उस भक्त का उद्धार किया जो कि जीवों को मारकर अधमरा छोड़कर बड़ा खुश हो रहा था। मीट ईटर, स्लॉटर हाउस खोला हुआ था उसने, मीट की दुकान थी, कसाई घर। अपनी पवित्रता से, अपनी शुद्ध भक्ति से नारद मुनि ने उसको भी जो है पवित्र किया। उसने कहा मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे कमाऊंगा, अपने परिवार वालों को कैसे पालूंगा? तो उन्होंने कहा जाओ पूछो कि तुम्हारे द्वारा किए जाने पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले बनेंगे क्या? घर पे पूछने पे सबने मना कर दिया, क्यों? ये तुम्हारी ड्यूटी है, पाप तुम कर रहे हो, तुमको लगेंगे पाप, हम क्यों लें? उसने नारद जी को कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम छोड़ दो ये सब। कहते मेरे घर का पालन पोषण, रोटी कैसे खाऊंगा? कहते तुम फुल टाइम हो जाओ गंगा के पास, जाकर तुम भगवान की कथा करो, वहां पर ध्यान लगाओ, भगवान का नाम लो, सब कुछ अपने आप आएगा, है ना। कई बार जब लोग बच्चे किसी परिवार से प्रयास करते हैं कुछ समय के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए, तो डर लगता है लोगों को, है खाएगा क्या, सोएगा कहां, कपड़े क्या पहनेगा, बड़ी ठंड है। तो जब वो भगवान को समर्पित होता है तो भगवान इसकी पूरी की पूरी जो है उस बच्चे की, उस भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि अगर हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान पूरा ध्यान रखेंगे, तो रखते हैं भगवान। जिस प्रकार इस मंदिर में जब लोग अपना कुछ जीवन देने के लिए समर्पित हुए, जैसे श्याम कृष्ण प्रभु में पिछले 15-20 साल से, और नंद प्रभु हैं, तत्प्रभु हैं, आपको कुछ चिंता हुई खाने पीने की जब से? आपको लगा कि शायद कल क्या बनाएंगे, कल क्या खाएंगे? कपड़ों की चिंता हुई श्याम कृष्ण प्रभु? ऐसा कोई दिन था जब आपको अगले दिन खाना ना मिला हो, यहाँ पर किचन में बोला हो आज अनाज नहीं है यहाँ पर? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। या किसी दिन यहाँ पर भक्त लोग ज्यादा हुए, आपको सोने की जगह ना मिली हो, ऐसा भी नहीं? ऐसा हो तो अच्छा है वैसे। तो कोई चिंता नहीं है भक्तों को, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में आ गए। रक्षति इति विश्वासो, भगवान हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास अगर हो जाए तो फिर वास्तव में करेंगे। जिस प्रकार जब द्रौपदी को भरी सभा में उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, भगवान कृष्ण द्वारका में खाना खाने बैठ रहे थे, चहलकदमी करने लगे, अचानक चिंतित हो गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? कहते मेरे भक्त द्रौपदी परेशान है। तो जाते क्यों नहीं आप? कहते नहीं अभी वो पूरी तरह सरेंडर नहीं है, मेरा नाम ले रही है लेकिन अपनी शक्ति का आभास कर रही कि शायद मैं बचा लूंगी अपने आप को। हे गोविंद, हे कृष्ण, है ना, तो नहीं भगवान आए तब तक। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया, कहा यस, अब कोई नहीं, बस अब कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम जो है पवित्र नाम, ये सरेंडर, ये शरणागति दिलाएंगे हमें। दोनों हाथों को ऊपर करने का मतलब ये है कि हम भगवान को शरणागत हों। अभी हम ढीले मन से होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, अभी ऐसे होते हैं। हाथ ऊपर कर भी लिए तो भी ये हृदय से शरणागति नहीं है। जब हृदय से शरणागति होगी, पूरा विश्वास जिस दिन हो गया, तो आप देखेंगे आपके विश्वास के साथ ही भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। जितना जैसा डिग्री का आपका विश्वास, ये यथा माम प्रपदंते तां तथैव वचामि, जिस डिग्री का आपका फेथ, उस डिग्री का भगवान का रेसिप्रोकेशन, उसी डिग्री का। तो जब हम लोगों का फेथ भगवान पर हो जाएगा, दृढ़ फेथ, किसी इच्छा को लेकर नहीं कि हाँ मेरी ये इच्छा है भगवान पूरी करेंगे ही करेंगे, मेरा पूरा फेथ है, ये क्या फेथ है, ये तो आपकी इच्छा है बीच में। अब ये इच्छा कीजिए कि भगवान जो मेरे साथ करेंगे वो बेस्ट करेंगे। ये नहीं कि भगवान 1 करोड़ की लॉटरी खरीदी है, सुबह शाम देखता हूं, आरती करता हूं, मेरा पूरा विश्वास है, क्या लगेगी लगेगी। ये फेथ थोड़ी है, ये तो बिजनेस है। फेथ का मतलब जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, मेरी हर सिचुएशन, मेरी हर परिस्थिति, मेरे हर सर्कमस्टांस जो है वो भगवान के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो मुझे चिंतित नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये जो पुत्र है प्रजापति के, ये तो पहले स्नान कर करके शुद्ध हो गए तीर्थस्थान में। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम तीर्थ स्नान कर सकें। लेकिन तीर्थ शब्द का मतलब क्या है? तीर्थ शब्द का असली मतलब होता है जहां पर भगवान के गुणों की चर्चा हो, उनकी कथा हो, वो तीर्थ स्थान है। इसलिए बताया गया कि कई बार लोग बड़े बड़े तीर्थों की तरफ जाएंगे स्नान करने के लिए, वहां डुबकियां लगा लगा के आएंगे और कहेंगे हमने तीर्थ कर लिया। नहीं नहीं नहीं, जहां पर कृष्ण के गुण अनुवाद की चर्चा हो रही है वो सबसे बड़ा तीर्थ है। जो कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो ऐसे तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं अपनी प्रेजेंस से, तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं भक्त लोग, तो वो जगह तीर्थ है। क्योंकि तीर्थ का मतलब है जैसे हम गंगा जाएं, यमुना जाएं या किसी और तीर्थ स्थल पर जाएं, डुबकी लगाएं, हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और होते हैं ऐसे। लेकिन भगवान की कथा सुनने से पाप ही समाप्त नहीं होते, भक्ति का उदय हो जाता है भक्तों के बीच में रहने से। भक्ति जननी है भक्तों का संग। तो भगवान के विषय में सुनने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, वो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है जिसके लिए हमें बार बार गंगा जमुना जाना होता है, वो ये जगह है। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते, सारे मंदिर हमारे वैकुंठा से, यहां कोई कुंठा नहीं। तो इस प्रकार जब हम लोग इन शुद्ध भक्तों की तरह समझ जाएंगे कि किस प्रकार किन दलदल में हम फंसे हुए हैं या फंसने जा रहे हैं, तो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। और प्रयास में हम लोगों को क्या करना होगा, सच में हृदय से भगवान से पुकार करनी होगी कि हां मैं फंस गया, कई कई जन्मों से फंसा हुआ हूं, फिर फंस गया, तो मुझे कृपा करके अपनी कृपा का पात्र बनाइए, अपने चरणों में रखिए। तो हम लोग उन तीर्थों में नहीं जा सकते, लेकिन इस तीर्थ में रोज आ सकते हैं। और इस तीर्थ में आने का भी क्या मतलब है, भगवान के सुंदर दर्शन करना। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज आंघ्रि। भगवान के सुंदर शरीर का एक एक अंग, कमल, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन इस जगत में और कोई सुंदर फूल ही नहीं है, तो इसलिए कमल के ही सदृश्य भगवान के हर अंग को बताया गया है। उसकी सॉफ्टनेस, उसकी सुंदरता, उसका कलर बहुत सुंदर है कमल, उसकी सुगंध। और इससे ज्यादा कुछ सुंदर नहीं है, इसलिए भगवान के अंगों की तुलना कमल के सदृश की गई है। कमल नेत्र पदम चरण है ना, बोलते ना कमल पदम बोलते हैं भगवान के। तो भगवान के जब दर्शन करते हैं, जैसे योगी जन भी करते हैं और हम लोगों को भी मेडिटेट या भगवान के चरण दर्शन करते हैं तो चरणों से करना चाहिए। भगवान के चरण कमल हम जैसे कंडीशन सोल्स के लिए बताते हैं थंडरबोल्ट वज्र का काम करते हैं, किसके लिए? हमारे जो हृदय में जन्मों जन्मों के पापों का जो पहाड़ बना हुआ है ना इच्छाओं का, और उस पर वज्र की भांति भगवान के चरण कमल उन पहाड़ को तोड़ देते हैं जब चरणों का दर्शन करते हैं। यही चरण कमल से जब जल, जो आध्यात्मिक जगत का जो पानी है जल, भगवान के चरणों को धोता हुआ जब इस धराधाम पर आता है, शिव जी जब उसको अपने सर पर रख लेते हैं तो ही फील्स ब्लेस्ड कि यस आई एम ब्लेस्ड नाउ, क्योंकि भगवान के चरणों का जल मेरे सर पर आ रहा है। तो शिव जी भी जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्हीं चरण कमलों में भगवान के सुंदर सुंदर चिन्ह हैं जो हमें हर प्रकार के, उनका मेडिटेशन करने से हर प्रकार के कलह कलमोश से दूर करता है। बाहर तो जिसको भी देखोगे आप एजिटेट होगे, भगवान के चरण कमलों को देखकर आपको कुछ और चीजें ध्यान नहीं आएंगी, तो उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान की थाइज का ध्यान करना चाहिए, जिनको बोला गया है भगवान की जितनी भी प्रकार की शक्तियां एनर्जी हैं वो वहां पर जो है विश्राम करती है, तो भक्तों को वो एनर्जेटिक बनाती है भगवान के थाइज का दर्शन। भगवान की नाभि कमल, जिसमें से कि कमल का एक पुष्प निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो कमल से दृश्य है, वही सारी के सारी सृष्टि का जो है केंद्र बिंदु है, वो नाभि कमल। भगवान के वक्षस्थल, भगवान का गर्दन, एक एक अंग भगवान का जो है अगर उन पर हम ध्यान लगाते हैं, भगवान की भ्रिकुटी मध्य, इन जगहों पर बताते हैं कि भगवान की शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है उसने भगवान की भ्रिकुटी को इस प्रकार तैयार किया है ताकि वो जो मकर ध्वज कामदेव भी भगवान की इस भ्रिकुटी को देखकर धराशायी हो जाए। तो इसलिए भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कामदेव को धराशायी किया, और किस लिए? ताकि भक्त लोग जो मेरी भ्रिकुटी को देखें, संत लोग भक्त लोग, तो उनकी जो काम वासना है वो भी क्या हो जाए? धराशायी हो जाए। इसलिए भगवान की भ्रिकुटी को देखकर हमारी काम वासना का जो है अंत होता है, और पूरे फेथ के साथ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मुझे कल देखा था परसों भी देखा था कुछ हुआ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हृदय में भगवान के इन सब अंगों के प्रति इनका दर्शन करते समय हमको ये चाह रखनी चाहिए कि हाँ भगवान के अंगों में पूरी वो शक्ति है, मेरी कंडीशनिंग के कारण मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार जब हम लोग दर्शन करते हैं तो हम लोग जो है अधिक से अधिक अपने को प्यूरिफाई कर सकते हैं, और उस प्यूरिफाइड लेवल से जिस प्रकार ये प्रजापति के पुत्र उस प्यूरिफाई सिचुएशन से, स्टेज से ये समझ पाए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और सारे के सारे जो है आजीवन ब्रह्मचारी बन गए, उसी तरह हम लोग भी चाहे किसी भी आश्रम में हैं, इच्छाएं तो सबकी रहती है, तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार भगवान का सुंदर दर्शन कर भगवान का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी जो है आपकी सेवा में रत हो सके। अगर हम भगवान की सेवा में रत होंगे इस प्रकार, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार नारद मुनि जी का संग प्राप्त हुआ प्रजापतियों को, और वो उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचार्य का पालन करके भगवान के धाम गए, इसके बाद हजार पुत्र और कर दिए प्रजापति ने कि भाई ये तो 10 के 10 अब काम नहीं करेंगे आगे, तो हजार और की ब्रह्मा जी सॉरी नारद जी ने उनको भी प्रचार किया, उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। तो इस प्रकार हमको भी इस संसार की जो रचना हुई है, जिस प्रकार मैथुन आगार में हम जकड़े हुए हैं, उससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। रूपा जी उस प्रपट में कहते हैं कि अगर हो सकता है किसी को इस प्रकार के कामों को करने में कहीं इंजॉयमेंट फील होता हो, नहीं लेकिन ये जो चपल सुख है, ये जो सुख है, ये इसकी आने वाली जिंदगी यानी आने वाले जन्मों के लिए और अधिक बेड़ियों को बांधने का काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई धाम जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसके चॉकलेट खाने की भी इच्छा है तो उसको नीचे आना पड़ेगा। भौतिक इच्छाओं को शून्य करना पड़ेगा। इच्छाएं शून्य नहीं होंगी, इच्छाएं जीरो लेवल पर नहीं पहुंचेंगी। भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा और इसकी एक तो भौतिक इच्छाएं ग्रॉस लेवल की होती हैं और एक सटल लेवल की होती है। अभी हमें सटल लेवल की नहीं मालूम पड़ेगी क्योंकि ग्रॉस ही नहीं खत्म हो रही। तो जब ग्रॉस धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू होंगी तो कुछ सटल इच्छाओं के बारे में मालूम पड़ेगा। जब ग्रॉस ऑलमोस्ट खत्म होने की होंगी तो कुछ ज्यादा सटल इच्छाओं के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर उनको भी खत्म करने का। जो सुख, जो आनंद भौतिक वस्तुओं से मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा से मिलता है, ये कौन बताएगा हमें कि तुम इस प्रकार के मान सम्मान से बंधे हुए हो? गुरुजन बताएंगे। उनकी इंस्ट्रक्शन हमको हृदय में चुभने जैसी होगी तो वो हमें पवित्र करेंगे। तो उस प्रकार की इच्छाओं को भी जब समाप्त कर दिया जाता है तब जाके व्यक्ति डिवोशनल सर्विस करने के लायक बनता है, मतलब भगवान की सेवा करने के लायक तब बनता है जब उसकी अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। अभी जो हम कर रहे हैं ये हमारी साधना का एक अंग है। देखने में वही डिवोशनल सर्विस, ये भी एक शुद्ध भक्त करेगा, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। हम जो कर रहे हैं, हम लोग अभी साधना भक्ति के अंगों का पालन करते हुए अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उससे राग में जा सकें, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, स्वीकृतियां अर्जित कर रहे हैं ताकि उसकी स्टोरेज से हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सकें। अनर्थ निवृत्ति के बाद जब भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद किया गया हरिनाम, उसके बाद की गई डिवोशनल सर्विसेज, ये जो है मानी जाती है कि ये सेवा है। तो तब तक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अभ्यास अनुकौनते हैं, बार बार अभ्यास करता रहना पड़ेगा। अभ्यास से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिंपल एक शॉर्टकट, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने दोबारा से अवतार लिया है गुरु के रूप में, यस्य प्रसादात् साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि है वो, कृपा की मूर्ति है वो, उनको प्रसन्न करने मात्र से हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। कितना सिंपल और शॉर्टकट है। तो अगर हम लोग इस जीवन में इस प्रकार अपने इंद्रियों को, अपने मन को सेवा में लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग अपने को शुद्ध कर पाएंगे और फिर उस नॉलेज में आकर हो सकता है कि किसी को लग रहा हो इस परपट को सुन करके, अरे हम तो गृहस्थ में चले गए। तो गृहस्थ में जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में जा रहा है तो पहले उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। नहीं कर पाया, लेट ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम, तो उसके बाद भी गृहस्थ जीवन के रूल्स रेगुलेशन सुने, पढ़े और उसको पालन करने का प्रयास करें, भक्तों के संरक्षण में रहे और फिर अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, वो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन में खुद को भी पवित्र करेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, और अच्छे प्रचार के द्वारा वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े राजा लोग हुए, परीक्षित महाराज, जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल की तरह, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उस प्रकार रहकर अपने को हमेशा अलग रखा और अपने जीवन को सार्थक किया, हम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद प्रभुपाद की जय।